नमस्कार, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक पर चर्चा करने वाले हैं, परिवर्तन के महान क्षण।
जी, पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की रचना। ये पुस्तक 1988 से 1990 के बीच जो उनकी क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला आई थी, उसी का हिस्सा है।
हाँ, और यह कोई साधारण साहित्य नहीं था। पूज्य गुरुदेव ने इसे अपना ज्ञान शरीर कहा था।
बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि मेरा यही ज्ञान शरीर जीवित रहेगा और इसे जन जन तक पहुंचाना है, ये उनका आग्रह था।
तो आज हम इसी ज्ञान शरीर के एक हिस्से को, इस पुस्तक के विचारों को समझने की कोशिश करेंगे, उस समय का समाज, भविष्य के संकेत, ये सब।
जी बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं।
तो पूज्य गुरुदेव पुस्तक की शुरुआत में ही समय के मिजाज पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक दौर था जब भावनाएं, संवेदनाएं बहुत गहरी होती थीं।
हाँ, मतलब इमोशंस, फीलिंग्स बहुत मायने रखती थीं।
लेकिन फिर 20वीं सदी के अंत तक आते आते वो कहते हैं भौतिक जगत और प्रत्यक्षवाद हावी हो गया। प्रत्यक्षवाद यानी जो आंखों से दिखे, बस वही सच।
हाँ, जिसे नाप तौल सके, आत्मा, परमात्मा, नैतिकता, ये सब बातें जैसे पीछे चली गईं। और इसका एक बड़ा असर हुआ। इस सोच ने इंसान को क्या समझा? पूज्य गुरुदेव कहते हैं, महज एक चलता फिरता पौधा या बातें करने वाला पशु।
मतलब जीवन का उद्देश्य बस भौतिक सुख हो गया।
जी, स्वार्थ, शोषण, ये सब बढ़ने लगा। वही बड़ी मछली छोटी को खाएगी वाली मानसिकता। विज्ञान ने सुविधाएं तो दी, इसमें कोई शक नहीं, पर नैतिकता के बिना, वो कहते हैं ना,
वही प्रगति दुर्गति बन गई।
बिल्कुल, असमानता बढ़ी, पर्यावरण का संकट देखिए, प्रदूषण, अणुशक्ति का खतरा, संसाधनों की कमी और नैतिक पतन भी।
ये वाकई एक बड़ा विरोधाभास है जिसे पूज्य गुरुदेव ने उजागर किया, तात्कालिक लाभ के पीछे की अंधी दौड़।
अच्छा, तो ये तो हुई भौतिकवाद की आलोचना, लेकिन क्या वो उस समय के अध्यात्म से खुश थे?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी एक बहुत अहम बात है उनकी पुस्तक में। वो उस समय जो अध्यात्म चल रहा था उसके खोखलेपन पर भी गहरी चोट करते हैं।
खोखलापन मतलब आडंबर, पाखंड, व्यक्तिगत लाभ की प्रवृत्ति, जैसे स्वर्ग मिल जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए, या चमत्कार दिखाकर भीड़ इकट्ठी कर ली। पूज्य गुरुदेव का मानना था कि सच्चा अध्यात्म तो लोक कल्याण से जुड़ा होना चाहिए, समाज के हित में दिखना चाहिए।
तो अगर भौतिकवाद भी सही दिशा में नहीं था और उस समय का अध्यात्म भी खोखला था, तो रास्ता क्या था? पूज्य गुरुदेव ने क्या मार्ग सुझाया?
उन्होंने एक समन्वय का, एक बैलेंस का रास्ता दिखाया। भौतिक विज्ञान का आध्यात्म तत्वज्ञान के साथ मेल, मतलब विज्ञान की तरक्की हो लेकिन उसकी दिशा नैतिक हो, आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित हो।
एक ऐसा अध्यात्म जो सिर्फ मान्यताओं पर ना हो बल्कि तर्क और अनुभव की कसौटी पर खरा उतरे।
एकदम सही, और ये सिर्फ बातें नहीं थी, पूज्य गुरुदेव ने इसे अपने जीवन में जीकर दिखाया। अपने करीब 80 साल के जीवन को उन्होंने एक प्रयोगशाला बना दिया।
हाँ, आपने परिष्कृत व्यक्तित्व और त्रिपदा गायत्री का जिक्र किया था, वो क्या है?
जी,
उन्होंने कहा, असली उपासना बाहरी कर्मकांड नहीं बल्कि परिष्कृत व्यक्तित्व है। यानी अपने विचार, अपना चरित्र, अपना व्यवहार, इसे लगातार सुधारते रहना, मांझते रहना, यही जीवन साधना है।
और त्रिपदा गायत्री
उसी साधना को जीवन में उतारने का तरीका। उपासना, साधना और आराधना। उपासना यानी ज्ञान और ईश्वर से जुड़ना, जिसे उन्होंने प्रज्ञा कहा। साधना यानी उस ज्ञान से आत्म सुधार, जिसे मेधा कहा। और आराधना यानी अपनी क्षमता को समाज सेवा में लगाना, लोक मंगल में, ये श्रद्धा है।
प्रज्ञा, मेधा, श्रद्धा।
हाँ, और उनका अपना जीवन देखिए, न्यूनतम जरूरतें और अधिकतम परमार्थ, एकदम जीता जागता उदाहरण।
और इस तरह के जीवन और साधना के परिणाम भी निश्चय ही असाधारण रहे होंगे।
बिल्कुल असाधारण। पूज्य गुरुदेव खुद कुछ उदाहरण भी देते हैं पुस्तक में, जैसे इतना विशाल युग साहित्य लिख देना। वो कहते थे ये उनका ज्ञान शरीर है।
लाखों समर्पित प्रज्ञा परिजनों का संगठन खड़ा करना।
बड़े बड़े कामों के लिए साधन अपने आप जुड़ते चले गए।
और वृद्धावस्था में भी उनकी वो सक्रियता कमाल की थी।
जी हाँ, ये सब आत्मबल की शक्ति का प्रमाण था, आत्मा की शक्ति।
ये तो व्यक्तिगत और संगठन के स्तर की बात हुई, लेकिन पूज्य गुरुदेव का लक्ष्य तो इससे भी कहीं बड़ा था, है ना? युग परिवर्तन की बात वो करते थे।
बिल्कुल, उनका अंतिम लक्ष्य था सतयुग की वापसी, मतलब समाज में, दुनिया में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की फिर से स्थापना। और इसी बड़े बदलाव के लिए उन्होंने 1990 की वसंत पंचमी से एक उच्च स्तरीय तपस्या शुरू की।
सूक्ष्म जगत में?
हाँ, विचारों और भावनाओं के स्तर पर काम करने के लिए। ताकि सामूहिक चेतना में सकारात्मक बदलाव आए। इसीलिए वो अपने इस ज्ञान शरीर, इस क्रांतिधर्मी साहित्य को जन जन तक पहुंचाने पर इतना जोर देते थे।
और भविष्य के लिए, 21वीं सदी के लिए उनका क्या कहना था, क्या भविष्यवाणी थी?
वो बहुत आशावान थे। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी उज्ज्वल होगी।
अच्छा, किस आधार पर?
वो मानते थे कि भौतिकवाद की अंधी दौड़ थमेगी, कुछ तो इसलिए कि संसाधन कम पड़ेंगे और कुछ इसलिए कि लोगों को समझ आएगा कि इसमें सार नहीं है। अध्यात्म और विज्ञान का मेल होगा, समाज में नारी शक्ति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, केंद्रीय होगी।
और समस्याओं का समाधान?
वो चेतना के स्तर पर बदलाव से आएगा, बाहरी जोड़ तोड़ से नहीं।
और एक बहुत बड़ा आश्वासन उन्होंने दिया।
क्या?
कि स्थूल शरीर में न रहने पर भी उनकी चेतना सूक्ष्म रूप से मार्गदर्शन और सहायता करती रहेगी,
क्योंकि आत्मबल किसी भी भौतिक बल से ज्यादा शक्तिशाली है।
जी,
तो संक्षेप में कहें तो परिवर्तन के महान क्षण हमें यही बताती है कि सच्ची प्रगति नैतिकता के बिना नहीं हो सकती,
और सच्चा अध्यात्म लोक कल्याण से जुड़ा है,
और आत्मबल से बड़े परिवर्तन लाए जा सकते हैं। पूज्य गुरुदेव का जीवन और कार्य इसका प्रमाण है।
बिल्कुल, उनकी दृष्टि भविष्य के लिए एक आशा देती है। और अंत में एक सवाल शायद मन में रह जाता है जिसपे हम सब सोच सकते हैं।
जी,
क्या सच में व्यक्तिगत और सामूहिक चेतना के स्तर को उठाकर हम बाहरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, असमानता, लड़ाई झगड़े, पर्यावरण संकट, क्या इनका स्थायी समाधान पा सकते हैं जैसा पूज्य गुरुदेव ने इशारा किया?
हाँ, ये वाकई एक गहरा प्रश्न है, इस पर मनन करने की जरूरत है।